الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورة الحجرات پڑھنے جا رہے ہیں. اس سورت کا نام الحجرات اس کی آیت نمبر 4 میں ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 108 ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت بالکل اینڈ کی سورتوں میں سے، کیونکہ 114 سورتیں تو ویسے ہی قرآن میں ہیں. تو مصحف کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں 49 نمبر ہے اس کا، لیکن نزولی اعتبار اس کا بالکل مدنی دور کا بھی اینڈ ہے، یعنی 9 ہجری یہ زمانہ تھا اس سورت کے نزول کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سال عام الوفود کا سال تھا، یعنی وہ سال جس میں وفد بہت سارے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس سورت میں ہمیں اصل میں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہنے کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا دین آداب والا دین ہے، مینرز. اور اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے آداب کیسے ہونے چاہیے، کیا مینرز ہونے چاہیے. تیسرے ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. ایک معاشرے میں آپ کی کمیونٹی ہے، اس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے رہنے کے. پھر اس کے بعد پوری انسانیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ادب آداب ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ سورت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول بتاتی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کسی کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے خاندان والے ہوں یا مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ آپ کے کیا طرز عمل ہونا چاہیے رہنے کا، مینرز کیا ہونے چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت تقریباً اینڈ کے وقت میں نازل ہوئی 9 ہجری میں، تو اس وقت ایک مسلمان معاشرے کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کچھ کے دلوں میں تو اسلام واقعی جگہ پکڑ چکا تھا، اس لیے وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ صرف مرعوب ہو کے کہ اب جیسے ہوتا ہے کہ یہ دین اب بہت فلرش کر رہا ہے، آگے فیوچر ان کا ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے. ان میں بدو قبائل بھی تھے، مگر ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی بھی تھی ابھی، ایسی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھے نہیں تھے وہ. تو ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ جانیں کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہنا کیسا ہوتا ہے، کیا معاملات ہمیں دوسروں کے ساتھ رکھنے چاہیے، اخلاق کیا ہونا چاہیے. تو سمجھ لیں کہ اخلاق سنوارنے والی صورت ہے، ہمیں مینرز سکھانے والی صورت ہے. ہو سکتا ہے یہ مینرز ہمیں گھر میں بھی نہ کسی نے سکھائے ہوں، اور اسکول کالج گئے تو وہاں پہ بھی اس بارے میں ہمیں نہ بتایا گیا ہو، لیکن اب قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھا رہا ہے. लिहाजा बहुत जरूरी है कि इस सूरत को समझा जाए और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश की जाए। जैसे कि वो बद्दू लोग थे, उनके पास सोशल एटिकेट्स नहीं थे, मैनर्स नहीं थे, इसी तरह आज भी हम एक जहालत के दौर में ही रह रहे हैं, जिसके अंदर एटिकेट्स और आदाब से हम बिल्कुल नावाकिफ हो चुके हैं। गो के हम इल्म के मैदान में या डिग्रियों में तो आगे चले गए, लेकिन अदब आदाब बिल्कुल भूल चुके हैं। ना बड़े छोटे की तमीज, ना ये पता है कि किसके साथ किस तरह से बात करनी है। देखें, इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब नहीं था। ठीक है, तो उसने जान तो लिया था, बड़ी इबादत करता था, लेकिन उसको अदब ना आया। तो अदब पहले आता है, फिर इल्म आता है। इंसान अदब सीखे तो वाकई फिर इल्म का कोई फायदा है, और अगर अदब नहीं तो आप जितने मर्जी रट्टे लगा लें, डिग्रियां ले लें, वो इब्लीसियत अंदर से खत्म नहीं होती फिर। तो अच्छे अखलाक वाला कम इल्म बेहतर है उस बहुत सारे इल्म वाले बदअखलाक आदमी से, जिसने बहुत सारा इल्म तो ले लिया, सर्टिफिकेट भी ले लिए, हमने इतनी दफा कुरान मुकम्मल कर लिया पढ़ के, ये कर लिया, ये बहुत सारे टाइटल तो ले लिए, लेकिन अगर वो बदअखलाक है तो उससे बेहतर है वो शख्स जो कम इल्म वाला है लेकिन अखलाक वाला है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मैं एक अच्छे अखलाक वाले गुनाहगार के साथ रहना बेहतर समझता हूं बजाय एक बदअखलाक बहुत बड़े सेंट के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में मुझसे सबसे ज्यादा करीब कयामत के दिन वो होगा जो अच्छे अखलाक का मालिक होगा। तो हम जब दीन की बात करते हैं ना, तो हम समझते हैं कि दीन नाम है, नमाज रोजे का, हज का, जकात का, बस ये दीन है, हमारा दीन जी मुकम्मल हो गया। हालांकि ये सूरत हमें बताती है कि हमारा दीन एटिकेट्स की बुनियादों पर खड़ा हुआ है, अखलाक। और सबसे ज्यादा जो लोग जन्नत में जाने वाले होंगे वो अच्छे अखलाक वाले होंगे, यानी अच्छा अखलाक तुलेगा कयामत के दिन, बहुत वजनी, सबसे ज्यादा वजनी ये अमल होगा अच्छे आमाल में। तो ये नहीं है कि एटिकेट से हमारा कोई ताल्लुक ना हो, हम नमाज रोजा तो कर रहे हैं लेकिन हमें मैनर्स ना हो, हमें अदब ना हो, हमने अदब सीखा ही नहीं कभी, हम उस मामले में बिल्कुल उजड़ हो, तो ये दीन मुकम्मल नहीं है। तो हमारा दीन, याद रखें, एटिकेट्स के साथ है, आदाब के साथ है। यानी अगर कुरान हमें एटिकेट सिखा रहा है तो खुद सोचे हमारे दीन में कितनी अहमियत होगी इस चीज की। और ये सूरत सिर्फ यही नहीं सिखाती, आदाब ही नहीं सिखाती, बल्कि एक मुस्लिम सोसाइटी कैसी होनी चाहिए जहां मुसलमान अमनो आमान के साथ रह रहे हों, वो सोसाइटी कैसी हो, वहां के अफराद एक दूसरे के साथ कैसे हों, इस बारे में भी हमें बताया गया। तो आज हम देखें कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के माशरों को, कि क्या उनके अंदर ये जो अहकामात दिए गए ये राइज हैं या नहीं, या हम जिस छोटी सी कम्युनिटी में भी रहते हैं उसमें भी ये राइज करने ज़रूरी हैं। अगर गैर मुस्लिम माशरे में भी रह रहे हैं लेकिन आपकी छोटी सी कम्युनिटी होगी मुस्लिम कम्युनिटी, उसके अंदर भी ये आदाब ज़रूरी हैं। तो इनको सीखने का मकसद ये है कि हम इनकी बुनियाद पर अपने माशरे को ढालने की कोशिश करें। खुद भी इन पे अमल करें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी इसकी तरगीब दें। अपने घर से शुरू करें और फिर अपने सारे मुआशरे के अंदर इन अहकामात को लागू करने की कोशिश करें। तो देखते हैं इस सूरत का आज पहली 10 आयात। मुख्तसर सी सूरत है, सिर्फ 2 रकुआत पे मबनी है, लेकिन बहुत कुछ एक एक आयत में समोया हुआ। देखते हैं आज की सूरत की तफसीर आयत नंबर 1 से 10 तक। या अय्युहल्लदीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। सबसे पहले ये बात काबिले तवज्जो है कि किसको मैनर सिखाए जा रहे हैं, किससे खिताब किया जा रहा है। गैर मुस्लिमों से नहीं, उन लोगों से जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, जो ईमान का दावा करते हैं, जो समझते हैं कि वो मोमिन हैं, उनसे कहा जा रहा है। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब ये कहा जाए या अय्युहल्लदीना आमनू, तो जो ईमान वाले हैं, इब्ने मसूद फरमाते हैं, आपको पता है अब्दुल्ला बिन मसूद का सहाबी रसूल, वो फरमाते हैं जब ये कहा जाए ना तो जान लो कि अल्लाह ताला तुमसे बात कर रहा है, तो मुतवज्जे हो जाओ। नहीं, इस वक्त हम पे पूरी तरह तवज्जो से सुने बात को, जैसे कि हमारे घर में कोई हमारी हमारे से बड़े कोई बुजुर्ग हमें आवाज दें हमारा नाम लेके, तो हम फौरन अलर्ट होते हैं, बात को सुनते हैं। अल्लाह ताला जो हमारा रब है वो निदा दे रहा है आसमान से, या अय्युहल्लदीन आमनू, तो वो जो सब दावेदार हैं ईमान के, उनको फौरन मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुछ बात फरमा रहा है, कोई हुक्म दे रहा है, कुछ करने का फरमा रहा है या किसी चीज से रोक रहा है। तो ये अब आगे जो आदाब आने वाले हैं, इसका मतलब ये ईमान का हिस्सा है, इसीलिए तो ईमान वालों को ये कहा गया, ये ईमान का हिस्सा है, ये मैनर्स। ईमान वाले हो तो इन मैनर्स को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अन्नास को नहीं कहा जा रहा, पूरी दुनिया सारे लोगों को नहीं कहा जा रहा, ईमान वालों। तो अब तवज्जो जब आपकी हो गई तो अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ला तुकद्दिमु, ना तुम आगे बढ़ो, बैना यदयिल्लाही व रसूले, अल्लाह से और उसके रसूल से ना पेश कदमी करो, ना तुम कदम बढ़ाओ। अब ये बात सिंबॉलिक है, फिजिकली तो आप नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला से आगे कदम बढ़ाना, वो तो मुमकिन ही नहीं है, उसके रसूल के आगे कदम बढ़ाना मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक है ये बात, कि यानी अल्लाह ताला के आगे कदम बढ़ाना क्या है, अल्लाह ताला की बात के आगे। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला की बात के आगे अपनी बात ना रखो, अल्लाह ताला के फैसले के आगे अपना फैसला ना रखो, उसके हुक्म के आगे अपना हुक्म ना चलाओ, उसकी बात के आगे अपनी ख्वाहिश को ना रखो, अपनी मर्जी को ना रखो, बल्कि सबसे ज्यादा उसकी बात को तरजीह दो। अदब है ये उसका कि जब वो बात कह दे तो वो रब है जिसको आपने मानना है कि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, इसका आपने दावा किया है, आप कलमा तैयबा पढ़ चुके हैं। अब उसकी बात के आगे किसी फिलोसोफर की बात, किसी साइंटिस्ट की बात, चाहे किसी आलिम की बात ही क्यों ना हो, कि चाहे किसी इमाम की बात क्यों ना हो, किसी की बात उसकी बात से आगे नहीं हो सकती। सबसे ऊपर बात रब की होगी, ये उसका अदब है, ये उसका एहतराम है, और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, हमें तो वैसे ही ये बात समझनी चाहिए कि जिसको हमने रब मान लिया अब उसके आगे किसकी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी ये बात बताना जरूरी था कि रहती दुनिया तक लोग समझ जाएं कि अब इसके बाद मेरी राय, मेरा फैसला, या मेरा दिल, या मेरी मर्जी, या मेरे जमाने के ट्रेंड्स, या मेरी जो मेरा माइंडसेट है जिस पे मैं ग्रो अप हुई हूं, या साइंटिफिक रिसर्च, इस सब पीछे है, मेरे रब की बात आगे है। इसी तरह रस्मों रिवाज जो इस वक्त जमाने में चल रहे हैं, या मेरी मजबूरियां, या मेरे माँ बाप, या मेरे हस्बैंड, या कोई कहे मेरे बीवी बच्चे, या लोगों का भी तो हमें बहुत होता है ना, लोग, या मेरी बरादरी, जो भी है, कोई भी अल्लाह की बात से आगे नहीं है। अल्लाह ताला की बात सबसे आगे है, उनसे आगे मत बढ़ो, ये बेअदबी है। आप सोचें, हमारा दीन तो इवन बड़ों का अदब सिखाता है जो आपसे उम्र में बड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो बड़ों का अदब ना करे और छोटों से शफकत ना करे। तो इतना तो बड़े का भी अदब सिखाया जो उम्र में बड़ा है, और कहां अल्लाह ताला की जात, उसका अदब है, उसकी बात के आगे हम अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी सोच नहीं रख सकते। ये पूरे दीन का खुलासा है, निचोड़ है। अल्लाह और उसके रसूल की बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। और इस्लाम, इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं हम इस्लाम लाए, तो क्या कहना चाहते हैं? यानी इस्लाम का मतलब सबमिट कर देना, सबमिट कर देना, खुद को झुका देना, सरे तस्लीम खम कर देना। लेकिन अगर हम यही नहीं करते और अकड़ के खड़े में, जी नहीं हमारी तो मर्जियां ऐसी हैं, नहीं जी हमें तो नहीं ये समझ आती, अच्छा आपको कोई हुक्म बताया जाए, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, और आप अपना सारी ना झुकाएं और ये कहना शुरू कर दें आगे से, नहीं जी हमें नहीं समझ आती इसकी तो, नो आई कांट डू इट, नहीं ये क्या बात हुई भाई, नहीं ये कैसे ऐसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता आजकल, नहीं मैं तो कन्विंस्ड नहीं हूं, नहीं मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ आती। यानी तुमने अपनी अकल को अल्लाह ताला से भी आगे रख दिया, या कहना शुरू कर देनी ये साइंटिफिक फैक्ट्स तो ये कहते हैं, ये क्या बात हुई? साइंटिफिक फैक्ट क्या चीज है जो रोज बदलते रहते हैं? ना भी रोज बदले, जब अल्लाह ताला ने बात फरमा दी तो उसकी बात के आगे कोई बात हो ही नहीं सकती, खड़ी ही नहीं हो सकती कोई चीज उसके आगे। कैसे हैं ये मुसलमान जो आज अल्लाह ताला के हुक्म के आगे, अल्लाह की बात क्या है? कुरान, ठीक है ना, कोई तो आपको फरिश्ते उतर के तो नहीं कोई अहकाम दे रहे हैं ना, कुरान है, यानी आप कुरान में कोई बात पढ़ते हैं और आप कहते हैं ये क्या बात हुई, ये पर्दे के अहकाम क्या हुए ने, औरतों की तो यहीं पे जाके मसले शुरू हो जाते हैं, फिर कोई कहना शुरू हो जाता है ये क्या हुआ, विरासत के अंदर इस तरह के क्यों हैं कवानी, उसके ऊपर एतराज शुरू हो जाए, आधी विरसे में आधा हिस्सा औरत का और यानी एक हिस्सा औरत का और मर्द के दो हिस्से, ये क्या बात हुई, कोई तो इतनी जुर्रत कर लेते, नहीं ये तो नाइंसाफी है भाई, कोई कहने लगते हैं हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, भाई मैं तो इंसाफ करूंगी, मैं तो दोनों को इक्वल दूंगी, तो यानी आप ज्यादा इंसाफ करने वाले हैं, आपने तो अपने आप को बढ़ा दिया अल्लाह ताला से भी आगे, यानी मुझे ज्यादा समझ है कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कोई कहता है ये इद्दत के अहकामात, ये क्या बात हुई, हमसे तो नहीं ये पूरे किए जाते, कोई कहने लगता है कि सूद के बगैर आज कैसे दुनिया चल सकती है? सारी दुनिया सूद पे चल रही है, ये क्या बातें हुई हैं? पुरानी बातें हो गई हैं जी, अब नहीं ये चला जा सकता इसके ऊपर। कोई खड़ा होके कहता है रिश्वत के बगैर तो चल ही नहीं सकता माशरा, रिश्वत नहीं देंगे तो अब चलेंगे कैसे? इसके बगैर तो कारोबार ही नहीं हो सकता, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। यानी हम देखें तो हर जगह पर हम अपनी अक्ल को आगे लेकर आते हैं। जो औरत खड़ी होके ये कह दे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये क्या तो कद्दीमु बैना याद है, ये लाही व रसूली नहीं है? ये नहीं है तो फिर और क्या है कि मैं अपनी मर्जी करूंगी, मुझे ज्यादा पता है। तो कितनी जगह हैं जहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बात के आगे अपनी बात रखी जाती है, कितनी जगह हैं जहां पे उनके हुक्मों के आगे अपनी लॉजिक्स पेश की जाती हैं, कितनी ही जगह हैं जहां पे उन्होंने कोई बात कर दी और हम उनकी बात के आगे अपनी ख्वाहिश को रख देते हैं कि मेरी ख्वाहिश तो ये है, मैं तो इस चीज को सही समझती हूं। या अगर अपनी नहीं है तो माशरे की, या माशरे की नहीं है तो हमारे तो फलां बुजुर्ग उनके पास तो यही होता था, हमारी फैमिली में तो ऐसे ही होता था। तो तुम्हारी फैमिली क्या चीज है? हमारे बड़े तो जी यही करते आए हैं। क्या ये बात हम कह सकते हैं जहां पे अल्लाह ताला की बात आ जाए, उसका कोई हुक्म आ जाए, रसूल की बात आ जाए? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आप जानते हैं कि उनके बेटे ने कहा था, अपनी जाहिर है माशरा जब थोड़ा बहुत ही यानी उस जमाने के लिहाज से थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि औरतों के लिए मस्जिद जाना थोड़ा यानी एक वो समझते थे कि सही नहीं है इन हालात में, तो उन्होंने अपनी बीवी को मना कर दिया मस्जिद जाने से। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी औरतों को मस्जिदों में जाने से मत रोको। तो उन्होंने आगे से कहा मैं तो रोकूंगा। तो वो इस कदर गुस्से हुआ कि मैं तुम्हारे सामने हदीस बयान कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं रोकूंगा। यानी हमारे सामने हदीस बयान की जाती है, हमारे सामने कुरान की आयत बयान की जाती है, बजाय हम सबमिट कर दें, कहें समय ना हुआ था ना, हाँ मैं मेरे अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं ये करूं, उल्टा हम उस पर एतराजात शुरू कर देते हैं, अपनी लॉजिक्स बयान करना शुरू कर देते हैं। यानी मेरी समझ क्या चीज है, अपने ओपिनियंस देने लगते हैं, मेरी राय ये है, कैसे हम उनके बराबर हो सकते हैं, उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं? तो ये आज बहुत कॉमन है और इसको कुछ नहीं समझा जाता, ना अदब लिहाज रसूल का रहा, और इतनी जसारतें करते कि अल्लाह ताला की बात को भी कुछ नहीं समझते। ये कुरान आगे पढ़ा हुआ है तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो मौलवी साहब ने ये कहा है, कुरान की आयतें दिखाई जा रही हैं, हदीस सही हदीस दिखाई जा रही है, उसकी कोई परवाह नहीं। वैसे भी अदब करना चाहिए, वैसे भी कभी भी अल्लाह ताला की बात के मामले में बहुत ज्यादा अपनी जुबानें ना खोलें। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा ऐसा भी है कि वो अपने मुंह से कोई बात निकालता है और वो उसको बहुत मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो इतनी बड़ी बात होती है कि उससे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में इतनी नीचे बना लेता है जितना जमीन और आसमान के दरम्यान फासला, इतनी अल्लाह ताला को बुरी लगती है उसकी बात। लेकिन हम अब जुबान खोलते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे अल्लाह ताला माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हम ऐसे करते हैं जैसे किसी भी राह चलते के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह रसूल के बारे में बात करना हमें कोई तमीज ही नहीं है। कभी किसी को कह रहे हैं ये अल्लाह मियाँ की गाय है, कभी को किसी को कह रहे हैं ये अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े में जाके इन्होंने घर बना लिया। यानी किस किस्म के मुहावरे हैं हमारे, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह ताला माफ करे। इस बात को मेंशन करना भी इसलिए है जरूरी कि हमें एहसास हो। कभी ऐसे मुहावरे में, जब हम मुहावरों में अल्लाह ताला की बात को यूज करते हैं, उसके नाम को यूज करते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं। उस रब्बुल आलमीन का जिसे थर थर कांपते हैं फरिश्ते भी, जिसका हुक्म उतर आए तो फरिश्ते सजदे में गिर जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती कि सर उठाएं, और जब अल्लाह ताला का हुक्म मुकम्मल होता है तो वो सर उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तो वो फरमाते हैं एक दूसरे को हक, जो भी फरमाया हक फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं, 600 पर वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े थे उनको देख के, उनके परों को जब एक दफा असली हालत में देखा, और उनकी हालत ये हो जाती है कि ऐसे जैसे पुरानी मश्क होती है, जैसे एक लेदर बैग मुचड़ के ऐसे हो जाता है, इस तरह हो जाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के आगे। और हमारी जुर्रतें देखें, हम क्या चीज है, और फिर हम अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे ऐसे खड़े हो जाते जैसे पता नहीं क्या है हम, हमारी अकलें क्या, हमारी समझें क्या, कभी आगे से कहने लगते अब मुझे तो समझ ही नहीं आती ये बात के वो हमेशा से है, हमेशा से कैसे है, हमेशा पहले तो कुछ होगा ना, तो ये शैतान की ढाली हुई सोच और ख्यालात हैं, इनको फौरन झटक देना चाहिए, औजुबिल्ला पढ़नी चाहिए, कैसे हो सकता है ये, कैसे, ये तो कलमा कुफर है कि कैसे हो सकता है। तो बाज दफा इंसान कलमा कुफर मुंह से निकाल देता है, और बाज दफा हम बेख्याली में ये कह देते हैं अल्लाह ताला ने भी कहा होगा, आपको क्या पता कहा होगा कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये अल्लाह ने कहा हो ना कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं। बहुत सारे लोगों की जुबान से ये मैं बात सुनती हूं, बी वेरी केयरफुल, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, वेरी केयरफुल, जब अल्लाह ताला का नाम ले तो सोचें कि मैं क्या कहने वाली हूं, मैं मुंह से क्या निकालने वाली हूं, जहां अल्लाह ताला का नाम आए जब आपकी जुबान से निकलने लगे केयरफुली, बहुत केयरफुली निकालें कि इसके बाद मैं क्या बात करने वाली हूं, अल्लाह ने कहा हो ना मैं इसको जरा दिखाता हूं, अल्लाह ने कहा हो ना मैं इसके साथ ये करता हूं, ये कैसी बातें हैं, आपको क्या पता, अगर इसी के ऊपर पकड़ हो जाए कि तुम्हें क्या पता मैंने क्या कहा, मैंने क्या सोचा, मैंने ये क्यों किया, तो बहुत तौबा इस्तगफार करें इस पे, कभी आगे मत बढ़े, आगे बढ़ने से रोका गया यहां पे, इसका मतलब हमने क्या करना है, आगे नहीं बढ़ना तो इसका मतलब पीछे होना है, इनसे पीछे अपने आप को रखें, ये ईमान का तकाजा है, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारे लिए हुक्म है, अगर नहीं हो ईमान वाले फिर जाओ जो मर्जी करो, जाओ जो मर्जी करो, फिर तो ठीक है, लोग बड़ी बड़ी जसारतें करते हैं, रसूल के बारे में बहुत बातें करते हैं, इसी तरह रसूल के मुतालिक क्या बात है, उन्होंने इतनी शादियां क्यों कर ली, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने छोटी उम्र में थी उनसे क्यों शादी कर ली, क्या आप आगे नहीं बढ़ रहे उनसे, खुद सोचें जब आप ये एतराजात करने खड़े हो जाते हैं तो आपको ज्यादा अकल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला उनको तो नहीं पता था, लेकिन हमें बहुत पता है कि कितनी उम्र की बच्ची से उनको शादी करनी चाहिए थी और कितनी पे नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ये क्यों फरमाया, ये मैंने हदीस सुनी है, ये क्या बात हुई, ये क्या एतराज नहीं है, जब जब एतराज करते हैं तो असल में हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं, ये जुर्रत कर रहे हैं, एतराज उसी पे किया जाता है जिसके ऊपर आप इतना ज्यादा किसी को नहीं कुछ समझते तो तभी एतराज करते हैं, जिसके आगे आप सबमिट हुए होते हैं उस पर तो एतराज कर ही नहीं सकते जी, हम तो झुके हैं, हम तो कोई चीज ही नहीं है, जब आप किसी के सामने अपने आप को इस तरह से झुका देते हैं कि मेरी अकल कोई चीज नहीं, मेरी राय कोई चीज नहीं, तो आप एतराज करने का तो आपका बनता ही नहीं, जब आपने अपनी अकल को सरेंडर कर दिया झुका दिया तो फिर ये अकल कैसे एतराज कर सकती है, क्या तो उनकी जात पे एतराज करना भी उनसे आगे निकलना है, कि मैं अपने आप को तो बहुत समझती और औजु बिल्ला उनको नहीं पता था, अस्तगफिरुल्लाह। तो आए दिन मुसलमानों में ही लोग ऐसी ऐसी बातें निकाल के ले आते हैं, कभी हलाल हराम के ऊपर एतराजात करते हैं, कभी किसी हुक्म पे एतराज करते हैं, कभी किसी हदीस पे एतराज करते हैं, कभी सुन्नत पे एतराज करते हैं, कभी किसी और की बात को नबी की बात के ऊपर ले जाते हैं, जी फलाने तो ये कह दिया, तो तो हदीस है तो फिर हम क्या करें। लेकिन हमारे तो इमाम ने ये कह दी, इमाम भी नीचे हैं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया था कि मेरी बात के आगे अगर हदीस से रसूल आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे दे मारना। लेकिन नहीं, हमने इमाम की बात को मानना है, रसूल की हदीस चाहे साइड पे पड़ी रहे। तो ये भी आगे बढ़ना है। इसी तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी, कि भी इसी भी सुन्नत को यानी उसको उसे कराहत करना, आय हाय ये क्या बात हुई, ऐसे कहना, ये भी क्या है, आप ज्यादा वेल मैनर्ड हैं, अपने आप को ज्यादा समझते हैं, कल्चर्ड, ज्यादा सिविलाइज्ड समझते हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं अपने आप को, तो ये तो आगे बढ़ना ही हुआ ना, पीछे तो नहीं आप हुए। पीछे होने में तो ये कि वो मेरे से आगे, वो लीड कर रहे हैं इस रास्ते को जो सिराते मुस्तकीम है, मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूं। उनको ज्यादा पता, मुझे नहीं पता, उनको ज्यादा समझ, मुझे नहीं समझ। जब आपने ये मान लिया ना, तो इतराज की गुंजाइश ही खत्म हो गई। फिर यकी और ये कहना कि ये क्या बात और कराहत करना, ये तो खत्म हो गया। फिर नापसंद करना उनके किसी तरीके को, ये खत्म हो गया, क्योंकि आपने ये मान लिया कि उनको ज्यादा पता है, उनकी हर बात सही है, मेरी नहीं सही हो सकती, उनकी सब बातें सही, वो आगे हैं। तभी आप आगे हो, तभी करा ना आपने उनको, जब आप समझते हैं कि ये सही है और बिल्कुल सही है और इनकी बात नहीं गलत हो सकती और ईमान का हिस्सा है हमारे कि उनकी बात नहीं गलत हो सकती, वो अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेड थे। मेरी और आपकी बातें और सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है। इमाम मालिक जब मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे ना, तो वो अपने शागिर्दों से कहते थे कि सबकी बात बेतराज हो सकता है सिवाय इस कब्र वाले की। सबकी बातों को कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये बात कमी है या गलत है सिवाय इस कब्र वाले के, उनकी बात को नहीं आप कह सकते, और ये ईमान का हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि तुम मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब ना बना लो, अपनी जान से, अपने माल से, अपने घर वालों से, हर चीज से ज्यादा। आप बताएं कि अगर किस कोई आपको इतना महबूब है, तो फिर क्या आप एतराज कर सकते हैं उसके ऊपर कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वो ये क्यों करते थे, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते। तो हम जो एतराज की फॉर्म में जिस तरह से बात करते हैं और जैसे ऑब्जेक्शंस होती हैं हमें, ये आगे बढ़ना है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है, और उन्होंने हमें दीन पहुंचा दिया और मुकम्मल पहुंचा दिया। इस पे तो नहीं किसी को दूसरी राय कि नहीं जी कहीं उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह कहीं कमी कर दी थी या कोई भूल तो नहीं गए थे वो, ये बताइए। आप मानते हैं कि सारा दीन उन्होंने हमें मुकम्मल पहुंचा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जितनी बातें जन्नत में ले जाने वाली थी वो सब मैंने तुम्हें बता दी, और जितनी बातें जहन्नुम में ले जाने वाली थी वो सब उनसे भी तुम्हें आगाह कर दिया, तुम्हें रोक दिया। तो आपने तो खुद फरमा दिया कि मैंने दीन पहुंचा दिया है तुम्हें, और हज्जतुल विदा पे आपने गवाही ले ली थी लोगों से कि मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है ना सारा, अल्लाह तू गवाह है ना मैंने इनको पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी हम एक नया तरीका लेकर आ जाए, ये हमें ज्यादा पता है कि जी ये चीज ऐसे करनी चाहिए, ये तरीका ये ज्यादा बेहतर है, आपको जो आज याद आ गया वो उनको नहीं पता था, आपने निकाल लिए 40वें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो 40वों का नहीं पता था, आपको ज्यादा पता है। आपने निकाल लिए कुल, कुल करना, कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं हमें बताया कि कुल किया करो, क्या उनके लिए मुश्किल था बताना या वो भूल गए, क्या कहना चाहते हैं, भूल गए थे या उनको ये इतना अच्छा तरीका उनको तो आया ही नहीं, मुझे और आपको तो आज समझ आ गई, वाह वाह क्या बात है। उनको तो नहीं ये पता था कि भाई हाँ इस तरह से बरसियां की जाएं, लेकिन मुझे और आपको तो ज्यादा पता है मामा, हम बरसियां करेंगे। उनको तो नहीं पता कि कुरान पाक पढ़ पढ़ के बख्शे जाएं, तो उन्होंने हजरत खतीजा के लिए भी नहीं बख्शा, लेकिन मुझे तो ज्यादा पता है कि इस तरह बख्शा जाना चाहिए। उनको तो नहीं पता था कि मीलादें करनी चाहिए, वो हर साल अपनी बर्थडे मनवाते। क्या सहाबा नहीं उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी बर्थडेज मनाने बैठ जाते, मीलादें करते? मस्जिद नबी में मीलाद हो रहे हैं, मीलाद की महफिलें जगह जगह कायम की जा रही हैं, वो घरों में मीलाद कर रहे हैं, मस्जिद में मीलाद कर रहे हैं। क्या नहीं, आप सरसर हमसे ज्यादा बढ़ के कौन था? तो उनको तो नहीं ये याद आया मीलाद करना, मुझे आप तो ज्यादा उनसे मोहब्बत करते, सहाबा कराम से भी ज्यादा हमारी मोहब्बत हो गई कि हम मीलाद करने बैठ गए। और एक बिदत थोड़ी है, बेशुमार बिदात हैं। अब एक नई चीज निकल आई कि भाई फलां तारीख को किसी ने भेजा, फलां तारीख को इतनी दफा, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह उनका नाम इतनी दफा पढ़ा जाए और फिर खजूरों पे फूंका जाए और फिर वो खजूरें खा ली जाए, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, पूरा साल ही नहीं आएगी। अच्छा, ये बात तो अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह वो तो बाद में पैदा हुए, ये बात तो जाहिर है किसी ने बाद में ही बनाई। तो ये इनको अब पता चल गई कि इससे बलाएं टलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ख्वाबों में आके बताना पड़ रहा है लोगों को कि भाई ये वाला पढ़ो, इस वक्त ये करो ये करो, उस वक्त अपनी जिंदगी में नहीं बता के गए, अब लोगों के ख्वाबों में आके बता रहे हैं। तो फिर दीन तो ना मुकम्मल हुआ, फिर उनको अब ख्वाब में भी आना पड़ रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, कहाँ कहाँ हम ठोकरें खा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। जो बिदत है जब वो आती है तो सुन्नत रुखसत हो जाती है, हम बिदतों का शिकार हैं, हमने इतनी बिदतें निकाल ली हैं। हर जगह दीन के अंदर अपनी मर्जी की चीजें शामिल करते जाते हैं। सोचें अगर ये शुरू से हो रहा होता, इसी तरह बिदतें चल रही होती, तो हम तक तो कभी दीन असल पहुंचता ही ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के एक जमात आप सरसर ने फरमाया कयामत तक ऐसी रहेगी जो सही दीन पे होगी। ये बिदतों वाला दीन जो है ना, ये छोड़ दे, कोई लोग होंगे जो बिदतों की तरफ बुलाएंगे, वो छोड़ दे, हमें इतनी अब समझ होनी चाहिए कि ये बिदत है, इसको नहीं हम कर सकते, ये दीन में नहीं। सिंपल दीन इतना सिंपल है, देख ले कुरान और हदीस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, नहीं किया, हमने नहीं करना। मातम किए चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, कितने साल हो गए, हर 10 मुहर्रम को मातम हो रहा है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तरीका था? 3 दिन से ऊपर फरमाया सोग नहीं करना, हम सोग कहते हैं, अगर हमने 3 दिन से ऊपर चौथे दिन ना किया तो लोग क्या कहेंगे? क्या क्या चीजें हैं जो हमने शामिल कर ली हैं दीन में, खुद ही अपने तरीके बना बना के अपने अपने तरह से। अब लोग कुछ कहते हैं, देखें उस जमाने में भी तो घड़ी नहीं थी, उस जमाने में भी तो जहाज नहीं थे, अब आप जहाजों में भी ना बैठा करें, ये भी फिर बिदत हो गई। कोई ऐसे लोगों को ये समझा दे कि बिदत का मतलब ये होता है दीन में नई चीज शामिल करना। दुनिया में तो आप तरक्की करते रहे, आप जहाज बनाए, रॉकेट बनाए, चांद तक पहुंच जाए, कोई नहीं आपको दीन मना कर रहा, दीन में आप नई चीजें शामिल कर सकते, क्योंकि वरना दीन प्योर नहीं रहेगा। अगर सब अपने अपनी चीजें शामिल करते रहेंगे तो वो तो एक सारी चीजों का एक मलीदा बन जाएगा, एक ऐसा हलवा बन जाएगा जिसमें सारे अपना अपना, आज मेरा दिल कुछ किया मैंने कुछ शामिल कर लिया, कल आपका दिल किया आपने कुछ शामिल कर लिया, परसों किसी और का दिल करेगा वो कुछ और शामिल, क्या ये दीन प्योर रहेगा? और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है कि ये दीन, ये कुरान, ये हदीस, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला है और ये इस तरह ही प्योर रहेगी। इसीलिए ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पकड़ के मजबूती से खड़े हुए हैं और बिदतों को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर उनको डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। हमें बिदतें करने दो, हम ज्यादा सुन्नत पे चलने वाले। अगर हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं हम, तो सुन्नी का मतलब सुन्नत पे चलने वाला, कितना सुन्नत पे चलते हैं, जबकि बिदात को अपनी जिंदगी में इतना शामिल किया हुआ कि सारी जिंदगी बिदात के ऊपर ही है, खुद ही ऐसे नमाजें बना ली जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, उस तरफ अजमेर की तरफ कोई मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, कोई फुलाने के नाम की नमाज पढ़ रहा है, कोई 11वीं दिला रहा है। 11वीं आपसे सलम को नहीं पता था कि 11वीं 11 तारीख होती है, 11वीं के खत्म दिलाए जा रहे हैं। नहीं, आप देखें तो सही कितनी बिदात है। तो ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना है। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरे और क्या, यानी ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए या अल्लाह ताला का हुक्म कुरान में पता चल जाए, तो हम फिर उसके बाद खामोश हो जाएं, चाहे हमारी अकल में कोई भी बात आ रही हो उसके अगेंस्ट हम खामोश हो जाएं, जुबान से कम अज कम जुबान से ना अदा करें कोई ऐसी बात। फिर इसी तरह जब हमने कहा कि उनको हम आगे करते हैं और हम पीछे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम देखेंगे ना वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, वो किस रास्ते पे हैं, उसी रास्ते पे हमने चलना है। यानी अल्लाह ताला ने किन चीज़ को हलाल किया, किन चीज़ को हराम किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों के बारे में बताया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो भी दीन है, हदीस के बगैर दीन मुकम्मल नहीं। जिन लोगों ने कह दिया हम हदीस ही नहीं मानते, तो चलो वो भी फारिग हो गए, अगर उनके लीडर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, फिर उन्होंने फिर लीडर किसी और को ही बनाया होगा जिसके पीछे वो चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि आपने कहाँ पे हद लगा दी कि ये जायज है ये नाजायज है, ये करना है ये नहीं करना, उसको हम जाने। यानी जिंदगी के हर शोबे में आप सफर करने लगे हैं ना, तो आप सफर के अहकामात देखें कि अल्लाह और उसका रसूल सफर के बारे में क्या हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन सफर करना पसंद किया, किस वक्त सफर करना पसंद किया, अकेले सफर करना पसंद किया या किसी के साथ मिलके पसंद किया, सफर के अंदर इबादात कैसे होंगी, सफर की नमाज कैसे होगी, सफर में चले जाएं तो उसके बाद कितनी जल्दी वापस आ जाना चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं हमें, हर बारे में रहनुमाई की गई है। इसी तरह मैं कोई करियर अपनाना चाहती हूं, तो किस करियर को मैं अपनाऊं, क्या ये करियर जायज भी है, क्या इसमें एजुकेशन लेना सही होगा, इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें कहीं ये तो नहीं कोई नाजायज बात आ जाती है, कोई सूद की बात आ जाती है, या कोई स्कल्पचर्स बनाने पड़ते हैं, कोई बुत बनाने पड़ते हैं, उनको कार्व करना पड़ता है, या हाथों से ऐसी तस्वीरें बनानी पड़ती हैं जो सही नहीं है, तो मैं कौन से फील्ड को चूज करूं। इसी तरह आप कारोबार करने लगे, तो बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कोई कारोबार करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस हैं, पूरा बाब है इस बारे में कि आपके तिजारत करनी है आपने, तो उसके क्या क्या अहकाम हैं, उसमें क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, वो सारे पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, तभी आप उनको फॉलो कर सकते हैं ना, वो आगे आगे चलें और हम उनके पीछे पीछे चलें। मैं खुद ही ना लीड करना शुरू कर दूं कि मैं खुद ही कायद हूं जी, मैं बताऊंगी क्या सही है और क्या गलत है। अगर सिराते मुस्तकीम पे चलना है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं जब हम तिजारत करने लगे, कोई बिजनेस करने लगते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि भाई किस बिजनेस में ज्यादा फायदा है, आजकल कौन सा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, किसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, फ्यूचर में कौन सा ज्यादा तरक्की करेगा, किस, इसी तरह जॉब में भी है, कौन से फील्ड में ज्यादा यानी ऑप्शंस हैं, ज्यादा इसके अंदर आगे काम होगा, ज्यादा इसकी जॉब्स खुलेंगे, यही सोचते हैं ना। लेकिन ये सोचने से पहले, ठीक है, ये आप देखें, ये इसको सोचने से पहले ये देखें ये परमिसेबल भी है कि नहीं, इसमें किसी पे जुल्म तो नहीं होता, इसी में किसी के साथ ज्यादती तो नहीं होती, इसी में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ है, तो ये चीज पहले देखें। और अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इसके खिलाफ है, तो उससे बाज रहें, उसकी तरफ ना जाएं। ये है पीछे रहना, और आगे निकल जाना ये होगा कि जी हमें पता है, नहीं, ये इसमें ज्यादा फायदा है, हम जानते हैं। तो इसी तरह जो फैसले उन्होंने कर दिए, उन फैसलों को ये ना सोचें कि ये फैसला अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस तरह से ही लिखा है, मुझे ज्यादा समझ है, ये गलत है और ये सही है, इसको इस वक्त दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, ये मेरा फैसला है और अल्लाह ताला का फैसला है कि इसको उठा ले। आप आगे ना बढ़े, खुद को मुतमईन करें अल्लाह ताला के फैसलों के आगे, उसके हुक्मों के आगे। कोई हुक्म भी है ना तो उसके ऊपर दिल में इत्मीनान पकड़े, आपके दिल में सकून होना चाहिए कि ये फैसला ना, ये मेरे अल्लाह का फैसला है, ये सही होगा, ये हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है ना तो ये सही होगा, जरूर सही होगा, उस पे मुतमईन होना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, ये नहीं कि दिल के अंदर वो एक घबराहट सी होती है, दिल में एक बेचैनी सी, वो हमेशा ही लगी रहे, ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद तो फिर हम अपनी औलादों को आगे नहीं कर सकते अल्लाह रसूल के, अपने शौहर की बात को आगे नहीं कर सकते अल्लाह रसूल। अल्लाह रसूल ने एक बात कह दी, फिर उसके बाद आप आके टीचर से पूछना शुरू हो, हाँ ये तो है लेकिन मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है, ये किस किस्म की बात है। आपने हदीस पढ़ ली कि लानत है ऐसी औरतों के ऊपर जो ये आईब्रोज को बनाती हैं, मैं एक मिसाल दे रही, आपने जब ये हदीस पढ़ ली कि इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, फिर आप आके पूछ रहे हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही पसंद होता है। नहीं, हदीस के आगे आप हस्बैंड की बात को रख रहे हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल ही कैसा सवाल है कि आप टीचर से पूछ रहे हैं कि एक तरफ अल्लाह के रसूल की बात है, उन्होंने लानत भेजी हुई है, और दूसरी तरफ हस्बैंड की बात है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, आप कि किस किस्म का सवाल है? क्या ये सवाल कभी उठ भी सकता है किसी मोमिन के दिल से कि किसके मुआजना किसके दरमियान कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कहाँ और शौहर कहाँ? नहीं जी, मेरे तो वालदैन ऐसे कहते हैं, वालदा कह रही है कि बेटी डांस करे सबके सामने शादी में और उस पे बड़े प्राउड हो रहे हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल की बात क्या है, हम जानते हैं, लेकिन नहीं, मेरी वालदा पर नाराज हो जाएंगी ना, तो आपने तो वालदा को आगे कर दिया ना अल्लाह और उसके रसूल के। लेकिन हम कितनी सारी ऐसी मिसालें देते हैं ना, हम क्या करें, पेरेंट्स ये कहते हैं फिर क्या करें, और सवाल भी करने चल पड़ते हैं। ये तो जवाब हमारे अपने अंदर ही होना चाहिए कि कौन आगे है और कौन पीछे है, फिर उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि देखो भाई अल्लाह की बात के आगे तो नहीं पेरेंट्स हो सकते। लेकिन जब हम इल्म नहीं लेते ना, जब हमने कुरान में सूरह हुजरात नहीं पढ़ी हुई ना, तो तब हम ऐसे सवाल लेके चल पड़ते, क्या करें, बच्चे नहीं मानते तो फिर बच्चों को आगे कर दे, अल्लाह से भी आगे हैं बच्चे हमारे, वो जिस अल्लाह ने हमें हमारी औलादें दी हैं उसकी बात पीछे, बच्चे आगे, किधर किधर हम किस किस को आगे कर रहे हैं। और कभी अपना ही दिल नहीं मानता, क्या करें, अपना ही दिल पापी है तो क्या करें, इसी को गुनाहों का चस्का लग गया है, अब ये मानता ही नहीं है तो अपने दिल की बात आगे कर लेते। तो देख लें अपनी जिंदगी में किस किस को मैंने आगे किया हुआ, किस किस को, अल्लाह से भी और रसूल से भी, और जहां कहीं सूटेबल हो, जहां कहीं कोई मसला ना हो और आराम से भी हो जाए, और चलो कहीं मना ही लेते हैं अल्लाह रसूल को भी, वहां पे सिर्फ हम पीछे आ जाते, बाकी टाइम हमने अपने आप को भी आगे रखना है और औरों को भी। ये बहुत आई ओपनिंग आया है कि मैं अपनी जिंदगी में देखूं, झांकूं और फिर सोचूं कि सबसे बड़ा अदब और सबसे पहला अदब तो अल्लाह ताला का है, बाकी बाद में आते हैं, अल्लाह के बाद उसके रसूल का, उसके रसूल से आगे भी कोई नहीं जा सकता, इंसानों में सब पीछे रहेंगे। तो इस तरह हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में एक खुद ब खुद एक हायरार्की होनी चाहिए कि सबसे टॉप पे कौन है, उससे बाद कौन है और उसके बाद कौन है, और इसमें किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं, फतवे लेने की जरूरत नहीं है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, जब जब अल्लाह ताला का डर होगा ना, गॉड कॉन्शियसनेस, जब आप कॉन्शियस होंगे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं कहाँ क्या कर रही हूं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जानता है, उसकी नजर मुझ पे है, मैं किधर डंडी मारती हूं, किधर अल्लाह के रसूल की बात पीछे कर रही हूं, अल्लाह की बात पीछे कर रही हूं। मुझे अल्लाह का डर रखना, उसका तकवा, बच के रहो गुनाहों से कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। अब आप देखें यहाँ पे ये दो अल्लाह ताला के अस्मा क्यों आए, क्योंकि जब इंसान को यकीन होगा ना, वो मेरा रब सुन भी रहा है और वो मेरा रब जानता भी है, तो फिर इंसान संभल के रहेगा, उसको पता है, वो सुन रहा है, दिल की बातों को भी वो सुनता है, दिल के ख्यालात जिनकी कोई आवाज नहीं है ना, उनको भी सुनता है। मैं किसको क्या समझती हूँ, किसको कितना बड़ा मकाम और मर्तबा देती हूँ, अल्लाह ताला का क्या मकाम है मेरी जिंदगी में, वो इसी से पता चलेगा ना कि उसको कितना ऊपर किया है। देखिए ना, आप कहते हैं मैं अल्लाह पे ईमान लाई, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, इलाह तो सबसे बड़ी हस्ती होती है, सबसे बड़ी हस्ती जिसे ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन कभी इलाह डॉलर को बुलाया हुआ है, कभी इलाह लोगों को बनाया हुआ है, कभी इलाह रस्मों रिवाज को बनाया हुआ है, तो अल्लाह ताला से तो ऊपर कर दिया ना, तो वो जानता है कि इसको तुम आगे कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह का मकाम सबसे ऊपर है या फिर लोगों का। और तुम ये समझते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पता था या किसी और को, जब कोई कराहत करता है इससे कि कोई हाथ से खा रहा है या कोई उंगली को चाट ले तो इससे कराहत करता है, तो क्या वो सुन्नत से कराहत कर रहा है? आपने नहीं खाना, आप ना खाए, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन सुन्नत से कराहत करना। जब कहा गया मक्खी पानी में गिर जाए तो आप उसको दोबारा दूसरा पार उसका डबो के और वो पानी पी सकते, तो कहते हैं या ये क्या बात है, आपने नहीं पीना तो ना पिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहा गया कि आपने जरूरी ये पानी पीना, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रही हूं कि ये छोटी छोटी मिसालें हैं कि कितनी जगहों पे हमारे सामने एक बात आ जाए ना और हम मुंह बनाते हैं और हम ऐसे घिन खाते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे पता नहीं मैं बहुत वेल मैनर्ड और कल्चर्ड हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो इतने कल्चर के खिलाफ है, मैं बहुत सिविलाइज्ड हूं, मैं बहुत वेल मैनर्ड हूं, देखो मैं फोर्क और नाइफ से खाती हूं, और ये क्या बात हुई हाथ से खाना, अस्तग़फिरुल्लाह, कई लोग नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला माफ करे, सिर्फ एक बताने के लिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कह देते हैं गवारों की तरह खा रहे हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं? नोट करें इन छोटी छोटी बातों को भी, नोट करें क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी बात आ रही है, ये जुर्रतें ना करें, मत आगे बढ़े अल्लाह और उसके रसूल से, हम कहने को तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं आगे बढ़ते, लेकिन जब हम ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं और अपने अमल को ऐसा करके दिखाते हैं तो फिर हम उनसे आगे ही बढ़ रहे होते हैं, जब हम अपनी जुबानों को नहीं रोकते, बेलगाम छोड़ा हुआ है, जो मर्जी कहते फिरते हैं तो हम आगे ही बढ़ रहे होते हैं, झुक जाएं उनके आगे, अपनी हर बात और अपने हर एक्शन को झुका दें, और अल्लाह ताला दिल को भी जानता है, दिल में कौन कौन लोग घिन खा रहे हैं और दिल में कौन कौन लोग एतराज कर रहे हैं और दिल में कौन कौन लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, अब हम इस तरह रहे और पर्दे हिजामों में रहने लगे तो पता नहीं कौन से जमाने के लोग बन जाएंगे, पता नहीं जैसे उनको तो पता ही नहीं था, इनको ज्यादा पता चल गया। तो ये सब चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, हाँ हमारे आमाल उस तरह से नहीं होते, हम अमल में सुस्ती कर जाते हैं, हमसे गफलतें होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम बाज दफा कोशिश करने के बावजूद उतने पूरे नहीं उतर पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन अपफ्रंट कह देना, अपफ्रंट एतराजात करना और उनको फिंगर पॉइंट्स करना कि जैसे ये कोई डिफेक्टिव बात है, इसमें नक्स है, ये किसी तरह एक मोमिन को जेब नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना सूरह निसा में, फला व रब्बी कला यूमिनुना हत्ता युहक्किमू कफी मा शजर बैना थुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये कभी मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक ये आपको हकम ना बना दे अपने हर फैसले में, और उसके बाद उनके दिलों में कोई तंगी भी महसूस ना करें जो फैसला आप कर दें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले क्या है जो हदीस में आ गए, जो आपने बता दिए, ये आपका फैसला है। अब उसके अंदर दिल को तंग करना, अब जैसे मैंने एक विरासत का ही बताया आपको, इसमें दिल को तंग करना शुरू कर देना कि क्यों ऐसे है, हमारी मर्जियां कुछ और हैं। तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक ये सरे तस्लीम खम ना कर दे, सबमिट ना कर दे आपके फैसलों के आगे, और ये ना समझने लगे कि हमारा फैसला गलत है, अल्लाह के रसूल का फैसला सही है। अब वैसे हमें देखें तो हम इतना दम भरते हैं, नाते पढ़ते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो फिर हमें बड़े एतराज होते हैं। तो खुद को आगे ना करें। फिर अगला एटिकेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक, अल्लाह ताला की बात तो एक ही दफा आई, और अल्लाह के नबी के अदब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में घूमते फिरते थे, इंसानों में ही रहते थे, तो इसलिए कहीं ये हो सकता था कि किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बेअदबी हो सकती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी के मकाम को वाजे किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना, आपकी बात का एहतराम करना, अल्लाह की बात का एहतराम करना है। मैं युते अल्लाह मैं युते रसूल फ़कत अता अल्लाह, जिसने इताअत की रसूल की उसने इताअत की अल्लाह की। तो रसूल की इताअत करना, रसूल की बात को मानना, रसूल का अदब करना, उनका एहतराम करना, वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं, उनका एहतराम अल्लाह ताला का एहतराम है, उनकी बात को मान लेना अल्लाह की बात को मान लेना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ए ईमान वालो मत अपनी आवाजों को बुलंद करो नबी की आवाज से ऊपर। नबी की आवाज से ऊपर तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वॉल्यूम आवाजों का उनकी वॉल्यूम से ऊपर नहीं होना चाहिए। वला तजहरु लहु बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबाद, और ना ऐसा हो कि तुम्हारे अपनी यानी बात को तुम बुलंद करो ऐसे, यानी अपनी आवाज को बुलंद करो ऐसे जैसे तुम बाज बाज के लिए करते हो, यानी जैसे अपने दोस्त अहबाब के लिए करते हो, जैसे उनके साथ बात करते हो, उस तरह ना करना। अब इसके बारे में एक रिवायत आती है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि काका बिन माबद को वफद का अमीर बनाए के उन्होंने फरमाया था, फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ना, यानी अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर थे, तो बुखारी में ये रिवायत है कि दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे, तो बनू तमीम का वफद आया हुआ था। तो ये दोनों जो थे सहाबा, ये अपनी तरफ से किसी एक बंदे को कह रहे थे, जैसे अबू बकर सिद्दीक काका बिन माबद को कह रहे थे कि इस वफद का अमीर बना दें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के फरमा रहे थे कि अकरा बिन हाबिस को बना दें। तो जब आपस के अंदर ये बात हुई, एक मतलब एक बात कह रहा है और दूसरा दूसरी बात कह रहा है रदी अल्लाहु अन्हुमा, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इस मामले में फरमा दिया कि तुम तो मेरे खिलाफ ही बात करते हो। तो हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, ये आप बात ना कहें, मैं आपके खिलाफ नहीं बात कर रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनका नाम सजेस्ट करता हूँ, दूसरे ने कहा मैं दूसरे का नाम सजेस्ट करता हूँ। अब इस दौरान दोनों की आवाजें बुलंद होने लगी, ऊंची होने लगी, जैसे होता ना बहस होने शुरू जाती तो गर्मा गर्मी हो जाती थोड़ी सी, और फिर इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी आवाज ऊंची होने लगती है। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बात कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो आवाजें ऊंची नहीं कर रहे थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बहस नहीं कर रहे थे, आपस में कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अदब बता दिया कि नहीं, ये एटिकेट्स नहीं है। जब नबी के सामने हो तो आपकी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा तो हाल ये था कि वो इस कदर आहिस्ता आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज दफा दोबारा पूछना पड़ता था कि आपने क्या फरमाया। और इसके बाद सही बुखारी में है कि साबित बिन कैस जो थे कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नजर नहीं आए, जब ये आयत उतरी तो असल में उनकी आवाज वैसे ही बहुत ऊंची थी, जैसे कुछ लोग होते ना वो उनके वॉल्यूम ही बहुत हाई होता है, वो लाउड ही बात करते हैं, तो वो कई दिन तक नहीं आए। तो एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आप सरसल ने पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे हमसाए में वो रहते हैं तो मैं बताता हूँ। तो जाके उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो तो उस दिन से जब से ये आयात उतरी हैं उस दिन से वो अपने घर में बंद हो गए। उन्होंने बीवी को फरमा दिया कि मुझे घर में ही कमरे में ही खाना वगैरह दे दो, और रोते जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे आमाल बर्बाद हो गए, मेरे आमाल बर्बाद हो गए, मैं जहन्नमी हो गया। क्योंकि इस आयत के अंदर देखिए आता है कि तुम अपनी आवाजें बुलंद ना करो और एक दूसरे के साथ जैसे बात करते हो वैसे नबी के साथ ना बात करो। अंतुम ये ना हो कि तुम्हारे आमाल सारे बर्बाद हो जाएं, तुम्हें पता भी ना चले अगर तुमने ये काम किया। तो उन्होंने फरमाया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो जहन्मी हो गया क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है, मैंने आपसे सलम के सामने ऊंची आवाज से ही हमेशा बात करते थे तो मैंने बात की तो मैं तो जहन्मी हो गया और मेरे तो सारे आमाल बर्बाद हो गए। अच्छा वो ये नहीं थे वो लोग कि जैसे आज हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग ज्यादातर जब आयात पढ़ते हैं तो हमारा ये होता है ये फलां के ऊपर फिट होती है, ये फलां के हमारे जहन में फौरन आने शुरू थे, देखा फलां ऐसे करती है ना, और अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते कि मैं भी तो ये करती हूँ, देखो मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, अपने आप को नहीं सामने रखते। अच्छा उनका क्या था फर्क कि वो लोग हमेशा अपने आप को सामने रखते थे कि जो ये आयत उतरी तो उन्होंने कहा बस मेरे लिए उतर गई है, उन्होंने ये नहीं सोचा नहीं मेरा तो वॉल्यूम ऐसा ही होता है, ये तो उनके बारे में उतरी होगी, फलां के बारे में उतरी होगी, देखो वो ऐसे करता है नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप पे लिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताया गया तो आपने फरमाया नहीं बल्कि उनसे कहो कि वो जहन्नमी नहीं है, वो तो जन्नती हैं। और वाकई अनस फरमाते हैं कि हम इन्हें जिंदा चलता फिरता देखते थे और हमें पता था कि वो जन्नत वाले हैं। और ये यमामा की जंग में जब मुसलमान बददिल हो गए थे तो हमने देखा कि हजरत साबित खुशबू मले कफन पहने हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह लड़ते हैं कि शहीद हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो सहाबा कहते होते थे कि ये हमारे अंदर जन्नती फिर रहा है, इसके बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि जन्नती। कितने कॉन्शियस थे ना वो अपने आमाल के बारे में, कितने उनको फिक्र थी ना क्या ये आयत मेरे बारे में, ये पता नहीं मेरे बारे में, ये मुझे कह दिया गया और उसके ऊपर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अपनी आवाज को बुलंद ना करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के ये आदाब थे। और उलमा फरमाते हैं कि आपकी जिंदगी के बाद भी जब आप फौत हो चुके हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब उसी तरह है, आपका अदब उसी तरह है कि अब भी कोई भी मस्जिद नबी में जाए आपके रोज़े मुबारक पे जाए तो वहां पर शोर मचाना, वहां पर ऊंची आवाज करना ये बिल्कुल ममनू है। ये ना हो कि हमारे आमाल जाया हो जाए, और हाल क्या होता है धक्के पड़ रहे हैं, शोर हुआ हुआ है, हंगामे हुए में है, वो अपनी तरफ से हम सवाब कमा रहे हैं, और क्या ये उल्टा ये ना हो कि गुनाह हमारे ऊपर ऐसा हो जाए कि नेकियां ही जाया हो जाए। तो हजरत उमर एक दफा उन्होंने दो लोगों को देखा कि कुछ बुलंद आवाज से मस्जिद नबी में बात कर रहे हैं, वो फरमाया तुम कहाँ से आए हो, उन्होंने बताया कि हम ताइफ से आए हैं, फरमाया अगर तुम मदीने के होते ना मैं तुम्हें इतनी सजा देता, क्यों तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ये कि अपनी आवाज को बुलंद ना करो। तो इसलिए हमें ये एटिकेट्स बताए गए हैं कि जब हम मदीना जाएं तो समझ के जाएं इस बात को कि वहां भी जाके हमने अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी, किसी के साथ बात भी करने की जरूरत पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता बात करें, वहां पे खामोशी होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था, तो आपकी जिंदगी में भी आप उनकी मजलिस में जाते तो कैसे बैठते, उसी तरह बैठना है। तो इस सिलसिले के अंदर हमें ये एटिकेट्स सीख के जाने होते हैं, और वहां बिल्कुल उलट काम कर रहे होते हैं लोग, वे शायद पता ही नहीं होता। से हमें पता चलता है कि जब हदीस पढ़ाई जा रही हो, हदीस की मजलिस हो, तब भी एटिकेट्स के खामोश रहें। कुराने पाक में भी हदीस आती है ना, अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताई जा रही हैं, तो उस वक्त भी खामोशी इख्तियार कीजिए। अब क्या है, हाँ इधर हमें हदीस बयान की जा रही है, या सीरतुल नबी हम पढ़ रहे हैं, या कुरान की आयतें आ रही, तो जाहिर है हदीस उसमें लाजमी आएगी। जब आप कुरान की तफसीर पढ़ रहे होते हैं तो हदीस लाजमी आएगी। अब उसके अंदर हदीस भी आ रही है, अब क्या है, हम अपने फोन पे टेक्सटिंग कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, हमने फोन पकड़ लिया और हम उधर बातें शुरू कर रहे हैं। हमें कुरान करीम में बताया गया है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तब भी आप खामोश रहें, खामोशी इख्तियार करें और गौर से सुने। और यहां पे बता दिया कि क्या, कि जब हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे अपनी जिंदगी में कुछ फरमाते तब भी अदब था, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमार की बात बता रहा है, ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो उसी वक्त हम खामोश हो जाएं। हमारी बात ऊपर नहीं है कि अब उस वक्त हम टेक्स्ट कर रहे हैं, या अब हम उसको लोगों से बातें करना शुरू कर दिया, हम अपने फोन चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बात की तो कोई अहमियत नहीं, ये मेरी बातें ज्यादा जरूरी हैं। यानी अहमियत दो उनकी बात को, अपनी बात को ऊपर ना करो। तो यहां पे हमें बता दिया गया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी और आपके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को सामने रखें, आपकी ताजीम करें, आपका जिक्र जहां पे आ जाए तो हम अदब करें और अपनी बात को ऊपर ना करें। एक, अपनी आवाज को ऊपर करने का मतलब ये हो गया कि वैसे भी कि हम बातें कर रहे हैं, दूसरा अपनी आवाज को ऊपर करना क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई और हमने आगे से अपनी बात बयान करने शुरू कर दी, नहीं जी मैं तो ये समझती हूं, ठीक है मैं ये समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है, एक तरफ हदीस है और एक तरफ मेरा ख्याल है, तो ये भी अपनी आवाज ऊंची करना है, ठीक है। अबू इब्राहिम फरमाते हैं हर मोमिन पर वाजिब है कि जब उसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो तो वो आपकी ताजीम करे, एहतराम करे, अपनी हरकात से बाज आके खुशू व खुजू इख्तियार करें, आपकी अदम मौजूदगी में भी अपने ऊपर ऐसी हैबत और जलाल की कैफियत तारी करे कि जो वो आपकी मौजूदगी में करता, और अल्लाह का सिखाया हुआ अदब इख्तियार करे। समझ आ रही है आपको बात, कि यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद होते तो आप क्या करते। अब बुखारी पढ़ी जा रही, मुस्लिम पढ़ी जा रही है, कोई और हदीस की किताब पढ़ी जा रही है, कुराने पाक में आप सिखाया जा रहा, तो उसमें हदीस बयान की जा रही, उसमें भी आप ना अपने आप को जैसे अपनी आउटर, अपनी जो अपीयरेंस है उसके अंदर भी, बातनी कैफियत भी और जाहिरी कैफियत में भी अपने आप पर खुशू खुदू को तारी करें, ऐसी हैबत और जलाल जैसे आपकी ऊपर तारी हो जाता है, किसी की हैबत तारी हो जाना। खुद सोचे ना, सोचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में तशरीफ ले आते तो क्या होता। अब वैसे तो लोग आजकल अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में आ गए हैं तो जी खड़े हो जाओ, और औरतों के हुलिये क्या होते हैं उस वक्त, फुल मेकअप है, फूल फूक बने संवरे हैं, खुशबुएं लगाई हुई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। शुक्र ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ला सकते, वरना हमारे तो हालात ऐसे नहीं थे कि हमारे घरों में वो तशरीफ लाते, उनकी तो बात भी हो तो अपने ऊपर हैबत और जलाल की कैफियत तारी कर लेनी चाहिए, और ये खड़े होके गा रहे हैं। अब इमाम मालिक रहिमहुल्लाह
जब मजलिस हदीस में बैठते थे ना, हदीस की मजलिस होती, इमाम मालिक तो आपको पता है ना कि टीचर थे, मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे, तो हदीस की मजलिस में बैठते थे तो उनका रंग जो था ना मांद पड़ जाता था, इस कदर शिद्दते बुका में मुब्तला होते थे कि जो जो मजलिस में बैठे हुए लोग होते थे उनके ऊपर भी वो तारी हो जाती थी कि इतनी ऐसे रोते थे। एक दिन उनसे इस बारे में बात पूछी गई कि आप क्यों इस तरह रोने लगते हैं, तो हालांकि इमाम मालिक साहबी नहीं है, लेकिन फरमाते हैं अगर तुम उन्हें देख लेते जिन्हें मैंने देखा है यानी सहाबा को, तो तुम मुझ पे ताज्जुब ना करते। मैंने जाफर बिन मोहम्मद को देखा, वो जरीफाना असलूब के हामिल थे, यानी बड़े हंसने बोलने वाले थे, जैसे होते हैं ना कई लोग होते हैं बस बड़ा लाइट से मूव में रहते हैं, हर वक्त वो हंसते बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता तो उनका रंग जर्द पड़ जाता था, और वो हमेशा तहारत की हालत में ही हदीस बयान करते थे। यानी ये वो ताबी की बात बता रहे हैं, सहाबी की नहीं, इस काट देंगे। जब वो सहाबी ताबी को देखते हैं तो कहते हैं वो ताबी भी, उनका भी ये हाल होता था, ये इमाम मालिक फरमाते हैं कि वो भी आप सल्लम का जिक्र फरमाते थे तो उनका रंग जर्द होता था, और हमेशा तहारत की हालत में हदीस बयान करते थे, इतना वो अदब करते थे। अब्दुर्रहमान बिन कासिम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते तो शिद्दत हैबत की वजह से ऐसे हो जाते जैसे इनका खून निचोड़ लिया गया। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रहिमहुल्लाह की मजलिस में आया करता था, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता तो वो रोने लगते थे ताकि आंखों में आंसू ना बचते थे, इतने रो रो के हलकान हो जाते थे। अब्दुर्रहमान बिन महदी जब हदीस पढ़ाते थे तलबा को खामोश रहने का हुक्म देते थे, और ये आयत पढ़ते थे ला तरफा हुआ स्वातकुम फौका सौत नबी। इसे आपको बात समझ आई कि जब हदीस पढ़ी जा रही हो तो अदब के साथ बैठे, हदीस की क्लास में अदब का लिहाज रखे, वुजू करके बैठिए, पाक साफ होके बैठिए, और उस वक्त बातें ना करें, उधर हदीस सुनाई जा रही उधर आप बातें कर, समझ नहीं, आप सल्लम यहां पे कुछ फरमा रहे होते तो आप बातें करते क्या? तो उस वक्त तवज्जो रखें, खामोशी लाजिम पकड़े, जैसे कि आपकी जिंदगी में होता तो आप करते। तो ये आदाब हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनको भी हमें सीखने की जरूरत है, हमने तो कहीं पे अदब सीखा ही नहीं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ जाए तो ऐसे ही करते हैं, अब यहां पे हमें क्या बता दिया गया कि ऐसे नहीं बात करो जैसे कि आपस में तुम एक दूसरे के साथ बाज बाज के साथ करते हो, यानी जैसे आपस में हम एक दूसरे को मसलन कह दे ओए तुम इधर आओ और यार क्या कर रहे हो, या ऐसे लोग बात करते हैं, सुनो तुम क्यों, इस तरह आम यानी अपने अपने साथ वाले लोगों से ऐसे ही बात करते हैं ना जिनके साथ बेतकल्लुफी होती, तो इस तरह नहीं करो तुम, वो अल्लाह के नबी हैं। इसीलिए देखिए हमें इतना अदब होना चाहिए, बाज लोग कहते हैं हजरत मोहम्मद ने ऐसे कहा, हजरत मोहम्मद, हजरत तो कुछ भी नहीं है, हजरत तो आप कहें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हजरत इज नथिंग। हाँ जो जरूरी है वो ये कि उनके ऊपर दरूद भेजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, हजरत कहने से नहीं कुछ होगा। दूसरी बात, जरूरी है कि आप उनका नाम लें, आप अपने मां बाप का नाम लेके बात करते हैं उनसे, आपकी अम्मी का नाम मसलन आमना है, आमना इधर आओ, ऐसे कहते हैं अम्मी जान अम्मी हजूर, अदब के साथ बात करते हैं ना। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए हर इंसान से बढ़ के हैं, अल्लाह ताला के बाद अगर कोई जात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हम इतनी बेपरवाही से ऐसे बात करते हैं, क्यों नहीं कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबुल्लाह नबी अल्लाह, ऐसे क्यों नहीं बात करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे करके बात कर ले। तो कितने ही लोगों को ऐसे देखा गया इतनी बेपरवाही से, हजरत मोहम्मद कहते, अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी नहीं ऐसे नाम लेके कुरान करीम में इरशाद फरमाया, किसी जगह या मोहम्मद नहीं है, हालांकि या आदम उसको नाम तवज्जो कर जन्नत, या आदम कहा गया ना, या नूह कहा गया, या इब्राहिम कहा गया, या ईसा बिन मरियम कहा गया। इतने बड़े बड़े अंबिया थे, लेकिन या मोहम्मद नहीं है। क्या कहा गया? जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया, कितने प्यारे अलकाबात से मुखातिब, या अय्युहल मुद्दसिर, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। अल्लाह ताला ने जिनको इतना मकाम और मर्तबा दिया कि अल्लाह ताला ने भी उनको इज्जत वाले अलकाबात, के जब लकब से पुकारा जाता है ना तो उसमें इज्जत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बड़े कोई आदमी होता है तो आप कहते हैं सदर साहब, वजीर साहब, आप उनके नाम नहीं लेके कहते ओए फलां, ओ फलां, जो भी उसका नाम हो, आप ऐसे नहीं कहते वजीर आजम साहब, या आप कहते हैं मैडम, या आप कहते हैं सार, या आप कहते हैं सदर साहब, या आप इस तरह से बात करते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को हम क्या आम आदमियों जितना भी मर्तबा नहीं देते कि जब उनके नाम को ऐसे ही ले लेते हैं, तो कहते हैं हम अपनी जुबान को इतनी दफा भी धो के उनका नाम ले तो हमारी जुबान इस काबिल नहीं उनका नाम लेने के। वो हस्ती हैं, तो हमने उनको क्या समझावा? हम उनके तो जो उनके सहाबा थे, जो उनके आगे ताबईन थे, उनकी भी पैरों की खाक के बराबर नहीं है, तो हम कैसे उनका नाम लेते हैं? हमें ये भी अदब नहीं है कि उनका नाम कैसे लिया जाए। और उलमा कहते हैं कि जिनके आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनके आगे अपनी आवाज भी बुलंद ना करो, तो उनकी बात के ऊपर एतराज करना या उनकी बात के आगे अपनी बात रख देना, ये कितना बड़ा गुनाह होगा। अगर सिर्फ आवाज ऊंची करने से सिर्फ ये है कि आपके अमल जाया हो सकते हैं, नेकियां जाया हो सकती हैं, तो खुद सोचो कि उनकी बात से इख्तलाफ करना, उसके ऊपर एतराज करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस करना, किसी किस्म की उनके ऊपर उंगलियां उठाना, ये क्या कर देगा इंसान के साथ? उसके तो अमल सारे ही जाया, हलाक हो गया वो। उनका तो बड़ा बड़ी शान है, उनका तो बड़ा प्रोटोकॉल है, और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी की बात ही ना हो। उनके आगे तो आवाज की पिच भी ज्यादा नहीं हो सकती, और वो तो देखें दो सहाबा कितनी शान वाले सहाबा हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दर्जा आता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फरमा दी नहीं, मेरे नबी का एहतराम है। और फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं कुछ कह रहे थे कि उनके साथ कोई चीख चीख के बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, और ये क्या बात है, और ये क्या, ऐसे नहीं कर रहे थे, आपस में कर रहे थे। लेकिन अदब ये है कि कोई बड़ा भी हो तो तब भी आपस में भी इस तरह से ना किया जाए। देखिए साहबा इंसान थे ना, गलती उनसे हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वहीं पे अदब सिखा दिया। इंसानों में इख्तलाफ भी हो सकता है, ये भी पता चल गया, लेकिन इख्तलाफ में भी बड़े के सामने आवाज बुलंद ना हो। और ऐसा नहीं था लेकिन कि उनके दिलों में कोई कदूरत हो, लेकिन उन वो भी इख्तलाफ कर सकते थे। यहाँ पे ये एक पॉइंट समझने का, इख्तलाफ उनमें भी हुआ, तो हम सोचते हैं क्या इख्तलाफ कभी नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता इख्तलाफ। जाहिर अल्लाह ताला ने हर एक को अकल समझ अपनी अपनी दी हुई है, किसी को किसी मामले में इख्तलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ के बाद उन्होंने अपने दिलों के अंदर कीने नहीं पाल लिए, ग्रुप बंदियां नहीं कर ली कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अलग अपना ग्रुप लेके चले गए, हजरत उमर अलग, देखो तुमने मेरे ऊपर उस वक्त ये बात की थी, देखो आपको पता, फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही वो थे कि जिन्होंने हजरत उमर को अपने बाद खलीफा चुन लिया था, तो उनके दिलों में ये चीजें नहीं थी। हमारा क्या हाल है, आज डिसएग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर क्या, अपने अपने ग्रुप लेके, वो इधर ग्रुप लेके बढ़ जाए, उधर से हिब्बतें कर रहे हैं, उधर से चुगलियां कर रहे हैं, दिलों में बोझ कीने भरे पड़े हैं, उसके बाद दूसरे को देखना नहीं चाहते, उसके बाद किसी ना किसी तरह चाहते हैं इसको पोक करें, किसी तरह इसके ऊपर एतराज करें, अब तो मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, इसने उस वक्त मेरे साथ ये बात की थी, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके बैर पड़ जाते हैं, आमने सामने आते हैं तो सलाम तक नहीं करना, नहीं जी फलां वक्त में इसने मुझे ऐसे, आप देख लें सियासत में इख्तलाफ होता है ना, अब उस इख्तलाफ कैसा हो जाता है, उसके बाद छोड़ते ही नहीं उस बात को, बस फिर तो दूसरे के साथ खत्म, ताल्लुक खत्म, और कई घरों के अंदर लोग एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, जी फलां इस पार्टी से है, मैं इस पार्टी से, ये किस तरह की बातें, इख्तलाफ राय हो सकता है, कोई मसला नहीं, दूसरे के साथ इख्तलाफ करने को भी मानना, एक मान के और उसको खुश दिली के साथ मान के कि किसी के साथ इख्तलाफ मेरा हो सकता है, सारी दुनिया मेरी सोच की नहीं हो सकती, और इख्तलाफ होना एक हेल्दी बात है, इसका मतलब किसी और के अंदर भी अक्ल है, मेरे अंदर भी अक्ल है, और लोगों में भी अक्ल है, और सारी मेरे पीछे ही चल पड़ेंगे तो सब तो मैं ही हूं मैं, लेकिन हम इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते, इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आप देखें आजकल खानदानों में, घरों के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर कैसी फूट पड़ जाती है, और इस इख्तलाफ में बाउंड्रीज कर, एक चीज में इख्तलाफ होकर बदतमीजी पे उतर आते हैं, बदतहजीबी पे उतर आते हैं, ग्रोबंदियां शुरू हो जाती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इख्तलाफ सहाबा में भी हुआ, हम भी इख्तलाफ को हेल्दी तरीके के साथ इसको माने, और इसके ऊपर ऐसी ग्रोबंदियां ना करें, और ऐसे दिलों में कीने ना पालें, और ये भी हम समझ लें कि फिजिकली आवाज बुलंद करना अगर आमाल को बर्बाद कर सकता है, तो इसके बारे में क्या कहना, जो अपनी राय को आपकी राय से बेहतर समझता हो, जो अपनी बात को आपकी बात से बेहतर समझता हो, ये जो ये कहे कि मुझे परवाह नहीं है अगर ये हदीस है तो क्या हो गया, जो ये समझता हो कि मेरी अप्रोच ज्यादा बेहतर है, मुझे लाइफ स्टाइल कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए मुझे ज्यादा पता है, और अदब अंदर भी हो, अदब बाहर भी हो, बाहर भी हो, जाहिर में भी खामोश रहे हैं, और अंदर भी आपके दिल में इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम हो उनके लिए, और ये समझ हो कि उनसे बढ़ के कोई नहीं है, ये दिल के अंदर वो बात, तभी हम ये इस आयत पे अमल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा हक अल्लाह का और उसके बाद रसूल का है, उसके बाद किसी और का है। हमें तो इतनी बातें सिखाई गई, इतने अदब सिखाए गए कि वालदैन का भी अदब सिखाया गया हमें तो, कि वालदैन को भी उफ तक ना कहो, तो अगर वालदैन का ये अदब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो वालदैन से भी ऊपर है, उनको उफ नहीं कहना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मर्जी बातें कह दें, और सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे फरमा रहे होते और हम आगे से कहते कि जी मैं नहीं मानती, ये कर सकते थे तो आज हदीस के आगे किस क्यों करते हैं? और हमें तो सुभान अल्लाह, हमारा दीन तो इस कदर अदब का दीन है कि हदीस में आता है अल्लाह ताला के अदब में से ये है कि एक सफेद बालों वाला यानी बड़ी उम्र वाले का अदब किया जाए, और नंबर टू हामिल कुरान का अदब किया जाए, और नंबर थ्री उस मुसलमान हाकिम का अदब किया जाए जो इस्लाम के मुताबिक फैसले करता हो, ये तीन लोगों का अदब अल्लाह ताला का अदब करना है, सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, यानी इनकी ताजीम अल्लाह की ताजीम है, तो बूढ़ा चाहे वो बूढ़ा आपके घर के अंदर है, आपकी सास है, आपके वालदेन है, कोई भी बुजुर्ग हैं, आपके जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले हैं, लेकिन वो अगर बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तो उसका अदब अल्लाह ताला का अदब है, आप अपनी कुर्सी छोड़ दें कि कोई बूढ़ा है, आप उसके आगे खाना रख दें, आप उसकी हेल्प कर दें, क्यों, इसे बूढ़ा है, उसका अदब करना, उसका एहतराम, उसे चीख चिल्ला के बात ना करें, उसका मजाक ना करें, आप उसकी बातों के ऊपर हंसे नहीं, आप उसकी नकलें ना उतारें, बड़े आदमी का अदब, बुजुर्ग का अदब, अल्लाह का अदब है, और हामिल कुरान का, जो कुरान का हामिल है, चाहे उसका पढ़ाने वाला है, चाहे उसका पढ़ने वाला है, चाहे उसको सिखाने वाला है, चाहे उसका हाफिज है, उसका आलिम है, इसका अदब अल्लाह का अदब है। और हमें ये समझ आती है इससे कि हम अपनी, जब यहाँ पे बता दिया गया, अपने अमल जाया करा देंगे अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कोताही करेंगे। यानी यहाँ, और ये खास तौर पे समझने की बात है कि जब के इंसान को पता भी ना हो, शऊर ही ना हो, पता ही ना चले कि उसके अमल जाया हो गए हैं, तो इससे बहुत बड़ा ये सबक हमें मिलता है कि बाज दफा इंसान की नियत नहीं होती। वो ये नहीं कह रहा होता जी मैं, हाँ मैं बेअदबी करूंगा, नहीं, उसकी नियत नहीं है, लेकिन उससे हो जाता है गैर शऊरी तौर पे। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि बाज दफा मुहावरे ऐसे बोल देते हैं, बाज दफा ऐसी बातें मुंह से निकाल देते हैं, बाज दफा घिन खाने लगते हैं, बाज दफा इतराज की टोन में बात करने लगते हैं, तो उसको पता भी नहीं चले कि उसके आमाल सारे जाया हो गए, पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है, देखिए हम आज अपना अमालनामा नहीं देख सकते, क्या उसमें से डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, हमें नहीं पता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कयामत के दिन जाके पता चले कि वो तो सारी नेकियां, नमाजें गई, रोजे गए, सदके गए, बड़े बन बन के बैठते थे बड़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी बात कह दी जो सही नहीं थी, तो सारी नेकियां गारत। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे, इतना अदब होता था, इतना एहतराम करते थे। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के आगे कोई बात लेकर आता था तो उसको डांट देते थे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि आपकी हदीस के आगे बात आई। और इसके शाने नजूल में आता है कि बनू तमीम का वफद आया और वो उस जगह पे आया जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के हुजरे थे। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो बाहर से वो आके आवाजें देने लगे और कहने लगे या मोहम्मद बाहर निकले, हम आ गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम कितना था, आपने तो नहीं कुछ फरमाया, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया। इसी तरह उलमा कहते हैं कि आइम्मा कराम का और मुहद्दिसीन का भी एहतराम इससे पता चलता है, जो हदीस बयान करने वाले जो उलमा हैं उनका भी एहतराम जरूरी है। यहां से ये भी पता चल गया हमें, क्योंकि वो भी अल्लाह के रसूल की बात बता रहे हैं, अल्लाह की बात बता रहे हैं, और उनको भी एहतराम करना जरूरी। तो ये चीजें ना, ये हमें शायद एटिकेट्स नहीं समझ हो, हमने शायद नहीं इसको पढ़ा हो किसी स्कूल कॉलेज में, लेकिन हमें आज जब पता चल गया ना, तो हम पिछली बातों पे तौबा करें और इस चीज को हम समझें कि हमने ऐसे नहीं करना। हम कुरान के तालिबे इल्म हैं, हम वो काम ना करें जो कि वो लोग करते हैं जिनको तो शऊर ही नहीं है। तो इसलिए शैतान बाज दफा इंसान को ऐसा वरगलाता है, ऐसा उसकी जुबान से चीजें निकलवाता है, लेकिन बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। और जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बाज दफा ये होता है कि जो लोग, जैसे यहाँ पे आए कि उलमा का एहतराम, बाज दफा लोग समझते हैं कि उलमा का एहतराम की क्या जरूरत है, ये तो पता नहीं हमारे नौकर ही हैं शायद, क्योंकि इनके जाहिर है इनको तो इनका अदब करने की क्या जरूरत है, ये तो कुछ भी चीज नहीं है, और अगर ये दीन की कोई काम करना शुरू हो गए हैं तो दे आर एट आर सर्विस, बस इनको 24 घंटे हमारी सर्विस में रहना चाहिए, इनको तो जरा भी इनका अपना कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ताला को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां, और सहाबा कराम भी जानते थे जो आपकी मजलिस में होते थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये चूंकि बद्दू थे, ये बाहर से आए थे, इनको इतनी समझ नहीं थी, इन्होंने ये काम किया कि ऊंची ऊंची आवाज के अंदर बुलाना शुरू कर दिया। आगे भी इनके बारे में बात आती है, तो अल्लाह ताला जानता है आपकी जिम्मेदारियां और अल्लाह ताला ने आपके एहतराम का हुक्म दिया। सहाबा कराम भी जानते थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे। जो लोग बद्दू थे, अल्लाह ताला ने उनको भी अदब सिखा दिया, क्योंकि जो बा अदब होता है वो बा नसीब होता है, जो बे अदब होता है वो बेनसीब होता है। ये बड़े कहा करते थे और ये वाकई सही है। अगर किसी को अदब नहीं है ना, तो वो डिग्रियां जितनी भी ले ले, वो कभी भी वाकई एक इल्म वाला नहीं कहला सकता। वो किसी ऊंचे मकाम पे नहीं कभी भी पहुंचेगा। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो, जैसे इन बंधुओं ने सोचा कि भाई हमारा तो राइट है, अब हम आ गए हैं तो अब हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, अब आए बाहर निकल के और हमें बस हमारे साथ मुलाकात करें इस वक्त जो भी टाइम है, चाहे दोपहर का टाइम है, चाहे इनके सोने का टाइम है, चाहे हमें, वी डोंट केयर। इसी तरह आज लोग सोचते हैं कि जो दीन का काम कर रहा है ना, वो भी मेरे घर का नौकर है। वाकई ऐसी बात है, और मुझे पिछले दिनों सुना सुना भी किसी से कि किसी ने कहा है कि ये कैसी टीचर हैं जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, चाहे ये सफर में ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे सवालों के जवाब इसी वक्त मिलने चाहिए। तो इत्तेफाक से ये लेसन आ गया। देखिए, जब कहा जाता है ना कि उलमा का, या जो दीन पढ़ाने वाले हैं या जो दीन सिखाने वाले, उनका अदब, तो हमने वो भी अदब नहीं जाना। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो कहीं बुलंद है, लेकिन जब उलमा कहते हैं कि इनका अदब क्यों किया जाए, इसलिए कि ये उनकी बात बता रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि चाहे आधी रात है, चाहे कोई सफर में है, चाहे कोई अपने किसी काम में है, हमने अगर अभी टेक्स्ट किया या अभी कॉल की, तो इसी वक्त हमारा जवाब मिलना चाहिए। अगर हमारा जवाब नहीं मिला, तो ये किस किस्म के टीचर हैं, ये किस किस्म के पढ़ाने वाले, फिर हम सख्त नाराज होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये मेरा हक है ना, कि अब इनकी कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए, ना ही इनको खाना पकाने की जरूरत है, ना इनके घर में कोई बच्चे होंगे जिनको देखने की जरूरत है, ना घर को साफ सुथरा करने की जरूरत है, ना नहाने धोने की जरूरत है, ना कोई इनकी इबादत का कोई टाइम होना चाहिए। बस दे शुड बी एट आर सर्विस ऑल द टाइम। खाना भी नहीं खाते होंगे ना ये, ना इनको कोई दुनिया का काम धंधा नहीं होगा, बस इन्होंने चूंकि पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब ये है कि बस हमने इधर मुंह से बात निकाली, इधर सवाल हमने किया, और इधर ये हमारी खिदमत में हाजिर हो जाए जवाब लेके, वरना ये किसी काम के नहीं है। फिर फौरन उनके ऊपर एतराजात, और फौरन गुस्सा, और फौरन उनके ऊपर नाराजगियां। आप देख लें कि जब हम इस तरह के रवैये रखते हैं, तो हम क्या इल्म लेंगे, या हम ये समझते हैं कि जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे गुलाम हैं। ये इनकी जो अब पढ़ाने लग गए हैं ना, तो अब इनकी क्या मिजाल है कि ये हमारे आगे जवाब ना दें हमारे सवालों का, और फौरी जवाब ना दें, या हमारी कॉल ना उठाएं। तो जहां पे हम ये सारी आदाब भूल गए, ना इस सोसाइटी के अंदर वालदेन का अदब है, ना टीचर्स का अदब है, ना बड़ों का अदब है, फिर हमारी जसारतें इतनी बढ़ गई, फिर अल्लाह रसूल का अदब भी खत्म हो गया, करते करते हम वहां तक पहुंच गए। इसीलिए आज देखें कहीं चैन सुकून नहीं, कोई कोई भी इत्मीनान के साथ नहीं है, क्योंकि हर तरफ लोगों ने जुबानें खोली हुई हैं, कुछ को किसी का लिहाज ही नहीं है, कोई लिहाज करने वाला नहीं, बस जो जिसके मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। और हम अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वो तो बद्दू थे, सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन हमारा हाल क्या है, हम अपने आप को ना बहुत तालीम याफ्ता समझते हैं, हमारे पास कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं, बस वो सिर्फ दीवारों पे लगाने के लिए ही होंगी, क्योंकि अगर वो डिग्रियां हमारे अदब, हमारी अखलाक, हमारी गुफ्तगू, हमारे मामलात में नहीं झलकती, तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो गार्बेज है और कुछ नहीं है। आपकी डिग्री बाद में कोई देखेगा, आपके अखलाक को पहले देखेगा, आपका अदब ये बताएगा कि आप क्या हैं।
तो ये चीज को यहाँ पे बता दिया गया। ये तो यहाँ पे तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया ना, और हजरत, एक रिवायत आती है कि हजरत उमर से एक बात पूछी गई कि अमीरुल मोमिनीन एक वो शख्स है जिस जिस जिसे नाफरमानी की ख्वाहिश नहीं थी और ना कोई नाफरमानी इसने की हो, और वो शख्स जिसको ख्वाहिश है गुनाह की लेकिन वो बुरा बुरा काम नहीं करता, इसमें अफजल कौन है? आपने जवाब में लिखा जिसको नाफरमानी की ख्वाहिश होती है फिर नाफरमानी से बचता रहता है, यही लोग हैं जो कि वाकई मुत्तकी हैं, वाकई मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो देखिए यहां पर एक बंदा है जिसको जिसके अंदर जिसके जहन के अंदर आता है कोई बात आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ या कोई एतराज आता है, लेकिन वो उसको नहीं जुबान पे लाता और अपनी बात को वहीं पे खत्म कर देता है और आउजु बिल्ला पढ़ता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ता है। उसने अपनी आवाज को ऊंचा नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आगे, वही है जो मुत्तकी है। वरना इंसान अपने आमाल को वेस्ट कर सकता है, जाया कर सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो पता नहीं कितने आमाल ना जाया हो चुके हों कि हमने हदीस के आगे या सीरत की क्लास में या हदीस की क्लास में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आई हो तो उसके अंदर कोई बात ऐसी कर दी हो, कोई ऐसी कोई ऐसा नुक्ता निकाला हो, और कहीं ऐसा ना हो कि हमने बिल्कुल लापरवाही से, ये चीजें ना ज्यादातर लापरवाही से होती है, केयरलेसनेस की वजह से। हम इंटेंशनली तो कोई मुसलमान नहीं ऐसा कर सकता, केयरलेसली कभी हमने कोई ऐसी तरीके से बात ना कर दी हो जो आपकी शान के लायक ना हो। तो बहुत केयरफुल रहें जब अल्लाह का नाम हो, जब रसूल का नाम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खुद ही बना बना के, अस्तगफिरुल्लाह ये हदीस है, यह हदीस है जी, जो जिसको रमजान की पहले इतला देगा तो उसको पता नहीं क्या मिलेगा या क्या, वो अल्लाह के बंदो ये कहाँ की हदीस है जो रमजान की खुशखबरी सुनाएगा? हर साल रमजान से पहले ये जी शेयर होना शुरू हो जाती, ये तो कहीं हदीस है ही नहीं, कोई ज़यीफ हदीस में भी नहीं है ये तो। लेकिन देखो किसी ने तो बैठ के बनाई होगी ना, और जहां पे किसी का दिल कुछ चाहता है कि ज्यादा बात को अहमियत दी जाए वहां पे साथ लिख देते हैं ये हदीस है, ये सात गुनाह है हदीसें घड़ना।